नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
चलो जय 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 कार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 कार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।
हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाए
जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा।
सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।
प्यार हमें वो कृपा वो करता हमेशा, वो है मेरा सहारा, वो ही है मेरी आशा। परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।
परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।
यहोवा भला है, उसकी करुणा हमेशा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा राजा है। सुहाना तेरी कृपा हो मुझ पर, गाऊं मैं तेरा तराना। यीशु मेरा सुर है ताल है मेरा, वो है जीवन मेरा।
यीशु मेरा सुर है ताल है मेरा, करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पुस्तक उसमें से फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। इस पत्री का लेखक पौलुस है, जिसने जेल में रहते हुए फिलिपी की कलीसिया को यह पत्र लिखा। और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस कहता है जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसी के बारे में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन फिर से एक साथ कर सकें। आज जब हम फिलिपियों की पत्री से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि प्रत्येक जीवन आपके वचन के द्वारा आज आशीषित होने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। पिता परमेश्वर, आप उन सब की भी सहायता करें। इसके साथ हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो आज किसी न किसी रीति से अपने जीवन से हताश होकर जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। पिताजी, आप उनके जीवन से भी बातचीत करें, ताकि वे इस बात को समझ सके कि आपकी वे रचना है, आप उनसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि प्रत्येक जीवन बच जाए। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, पौलुस मसीही जीवन का आधार प्रकट कर चुका है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। अब वह मसीही जीवन शैली पर कुछ कहने के लिए जा रहा है। प्रथम अध्याय में मसीही जीवन का दर्शन शास्त्र बताया गया था। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। प्रभु यीशु पौलुस के जीवन का केंद्र था। इस अध्याय में मसीही जीवन शैली दी गई है। यह मसीह का मन है, जैसा हम यहाँ पर देखेंगे। यह नकल करना नहीं है। आज मनुष्य मसीह के अनुसार की चर्चा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके कहने का अर्थ क्या है, विशेष करके जब उनका जीवन उनके कथन के अनुसार नहीं है। क्या वे प्रभु यीशु की नकल करना चाहते हैं? पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का नमूना है, तो उसके कहने का अर्थ यह नहीं कि हमें उसकी नकल करना है। वह संचार की बात कर रहा है, अर्थात हम में मसीह का मन होना है और यह केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। मेरे मित्रों, मुझ पर दोष लगाया जाता है कि मैं हठी हूं और अपनी मन मर्जी करता हूं। ऐसा करके मैं हमेशा ठोकर खाता हूं और कहता हूँ, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ कि अब आगे का काम तू संभाले। यह देखना अति मन भावन है कि प्रभु कैसे आगे का काम संभालता है। हमें शांत बैठकर परमेश्वर के आत्मा को काम करते हुए देखना सीखना है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को पूरा करने में व्यस्त रहना है, परंतु सामर्थ्य और ऊर्जा परमेश्वर का आत्मा प्रदान करता है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में अर्थात दूसरे अध्याय में मसीह के मनुष्यत्व के बारे में धर्मशास्त्र में कहे गए आध्यात्मिक कथनों में एक महान कथन उपस्थित है, जिससे सदियों से चला आ रहा विवाद उत्पन्न हुआ है। और सच तो यह है कि इसके कारण यूरोप का विभाजन भी हुआ है। यही मुख्य कारण था। इससे एक विचार यह उत्पन्न हुआ है कि मसीह ने स्वयं को ईश्वरत्व से खाली कर दिया, परंतु इस एकमात्र कथन से स्पष्ट होगा कि प्रभु यीशु ने स्वयं को ईश्वरत्व से खाली नहीं किया था। इससे पूर्व कि हम इस विवादित विषय को देखें, हमें इस व्यवहारिक पत्री का व्यवहारिक पक्ष देखना होगा। तो आइए आप मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 2:1 को निकाल लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2:1 में लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाड़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ परिस्थितिवाचक शब्द नहीं है। पौलुस यदि का उपयोग विवाद करने में भी करता था। पौलुस तर्क के आधार पर विवाद करता था, और कहा गया है कि यदि आप पौलुस की बातों में तर्क नहीं देखते तो आप पौलुस के विचारों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। अतः इसका अनुवाद इस प्रकार है, क्योंकि मसीह में शांति, क्योंकि मसीह में प्रेम से ढाड़स, और क्योंकि आत्मा की सहभागिता, और क्योंकि करुणा और दया है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में पौलुस कहता है फिलिपियों 2:2 में, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। वह बंदी गृह में तो है, परंतु वह आनंद मना रहा है, प्रभु में आनंदित है। परंतु वह कहता है कि उसका आनंद तब पूरा होगा जब उसे यह पता चलेगा कि फिलिपियों के विश्वासियों के जीवन में सुसमाचार कार्य कर रहा है। आगे हम देखते हैं, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जी हाँ, जैसा हमने देखा है कि फिलिपी की कलिसिया में एक छोटी सी समस्या थी, और वह है मतभेद। पौलुस चाहता था कि वे एक मन रहें। वह उनसे यह नहीं कह रहा है कि एक दूसरे की नकल बन जाएं। कलिसिया में प्रायः दो दल अवश्य ही होते हैं, एक पास्टर के पक्ष का और दूसरा उसका विपक्षी दल। ये लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वरन अपने अगुओं की नकल करते हैं। एक मन होने का अर्थ है मसीह का मन अपनाना, जिसके कारण अभिव्यक्तियों में अंतर, वरदानों में अंतर, सेवा में विविधता, शिक्षाओं में छोटे मोटे अंतर आदि को स्वीकार करना है। इन मतभेदों के कारण हम एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ेंगे। यदि हम में मसीह का मन हो तो हम मुख्य मसीही सिद्धांतों पर सहमत होंगे, हम उससे प्रेम करेंगे, तो हमारे बीच में मतभेद होगा ही नहीं। 2:3 में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पौलुस पहले भी कह चुका है कि कुछ लोग डाह और ईर्ष्या के कारण मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। अब वह कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज कलिसिया में सबसे बड़ी समस्या शिक्षाओं की नहीं है, समस्या का मूल कारण है विरोध और डाह। कुछ लोग स्वभाव से ही समस्या उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि हम इस आदेश का पालन करेंगे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, तो मेरे विचार में कलीसिया की 90% वरन 100% समस्या दूर हो जाएगी। यदि आप कलीसियाई सेवा विरोध के कारण कर रहे हैं, तो उचित होगा कि कुछ न करें। यदि आप नाम कमाने के लिए कलीसिया में सेवा करते हैं, तो भी यह बात है। संस्थाओं की सभाओं में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां गुलदस्ता लेने वाले की, कुर्सी लेने वाले की आदि अनेकों की सराहना सबसे बड़ी है, अन्यथा आप समस्या में पड़ जाएंगे। क्या विश्वासियों के लिए आवश्यक है कि उनकी सराहना की जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उनको सिर पर चढ़ाया जाए? पौलुस कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करें, अपना नाम कमाने के लिए या दिखावा ना करें कि आपने बहुत कुछ किया है या कर रहे हैं। आगे कहता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। शायद योदिया और सुंथुखे की यही समस्या थी। वे संभवतः इस भ्रम में थी कि दूसरी एक को नीचा दिखाना चाहती है। यदि हम इस पद का पालन करें, तो हमारी सब समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसके पालन से हमारी झूठी सम्मान की अपेक्षा और पद प्राप्ति की लालसा का उन्मूलन हो जाएगा। मेरे मित्रों, आज हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? यदि हमारी कलीसियाएं इन बातों को समझ जाए और बिना डाह के, बिना दिखावे के एक दूसरे की सहायता करे, तो निश्चय ही कलीसिया मसीह की संगति में आगे बढ़ेगी और बहुत सारे लोग इसके द्वारा से आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए हम आगे पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2:4 में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ध्यान दीजिए, दूसरों, यह एक महत्वपूर्ण शब्द है। मुझे एक रेडियो कार्यक्रम प्रसारणकर्ता से पत्र प्राप्त हुआ और आर्थिक सहयोग पाकर मैं गदगद हो गया। उसने लिखा, आपका कार्यक्रम एक महान आशीष है। मैं उन व्यक्तियों को नहीं जानता हूँ, परंतु यह अवश्य जानता हूँ कि वह प्रभु यीशु का मन प्रकट कर रहा था। वह इस पद के आदेश का पालन कर रहा था, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। उसका पत्र मेरे लिए बड़ा ही विनम्रता का अनुभव सिद्ध हुआ। शब्द दूसरों, जी हाँ, इस गद का मुख्य शब्द मसीही विश्वास ने इस शब्द दूसरों को महत्व प्रदान किया है। प्रभु यीशु स्वर्ग की महिमा को त्याग करके इस पृथ्वी पर क्यों आया था? दूसरों के लिए हमें सुसमाचार क्यों सुनाना है? दूसरों के लिए अपनी अपेक्षा, दूसरों की सुधि लेना ही मसीह का मन है। मेरे प्रियो, मसीह का मन दीनता का मन है। अब पौलुस हमें मसीह के मन के बारे में बताएगा, जिसे हम फिलिपियों की पत्री 2:5 में पढ़ते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी हाँ, मसीह का मन, इसे प्रकट करने वाला एकमात्र गुण क्या है? दीनता। आपको स्मरण होगा कि इफिसियों की पत्री 4:1-2 में हमें कहा गया है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तब वह उसकी व्याख्या करता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यह मसीह का मन है। हम न तो दीन हो सकते हैं और न ही नम्र। हमारी रचना ऐसी नहीं है। हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बात को बड़ी करना चाहते हैं। हम सब ऐसे ही हैं। आप यह न कहें कि आप ऐसे नहीं हैं। आप भी ऐसे ही हैं। हम में से किसी को भी आहत होना नहीं आता है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें दुख पहुंचाए। हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें अनदेखा करे। यदि हमें ऐसा प्रतीत हो कि हम कुचले जा रहे हैं, तो हम दूर हो जाते हैं। मैंने एक अति उत्तम प्रचारक के पुत्र के बारे में सुना कि वह आवारा हो गया है, क्योंकि उसका बड़ा भाई बुद्धिमान था और वह बालक सदैव उसकी प्रशंसा सुनता था। इस कारण वह विपरीत दिशा में चला गया। यह उसका विरोध प्रदर्शन था। यह प्राकृतिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यदि उस युवक से कहा जाए, पुत्र इन बातों पर ध्यान मत दो, तो वह ऐसा नहीं करेगा। वह मनुष्य जिसने नया जन्म नहीं पाया है, वह दीनता अपनाने के क्षेत्र में नहीं होता है। मेरे मित्रों, अब हम धर्मशास्त्र के महान आध्यात्मिक कथनों में से एक को देखेंगे। कुछ विचारक इसे प्रभु यीशु के मनुष्यत्व का महानतम सैद्धांतिक कथन मानते हैं, परंतु हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने वास्तव में स्वयं को ईश्वरत्व से खाली नहीं किया था। इसमें हमें मसीह यीशु की दीनता के सात चरण दिखाई देंगे। काश मैं आपके लिए इन अग्रिम कुछ पदों की महानता का चित्र प्रस्तुत कर पाता, हम समझ पाए कि वह कितना ऊंचा था और कितनी नीचे उतरा, तो अच्छा ही होगा। हमारे अंतरिक्ष की करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी उस दूरी की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उसने पार की। हम यहाँ सात अवतरण चरण देखेंगे, इसके पश्चात सात अवरोहण चरण, मसीह का महिमान्वन। हम सबसे पहले दीनता में मसीह का मन देखते हैं, इसके बाद हम परमेश्वर का मन देखेंगे। परमेश्वर पिता के मन में था कि वह प्रभु यीशु का महिमान्वन करे। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में आने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं नहीं जानता कि आप कहां जाएं और क्या करें, परंतु यह अवश्य बता सकता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर का उद्देश्य था कि प्रभु यीशु को महिमान्वित करे। मेरे विचार में यही हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की इच्छा है। हमें हमारे हर एक काम के द्वारा, जहां भी हम हों, प्रभु यीशु का महिमान्वन करें। प्रभु यीशु के महिमान्वन के इसी मुख्य उद्देश्य में हमें परमेश्वर के साथ एक हो जाना है। मेरे प्रियो, उसका पहला अवतरण चरण था कि उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया। वह नीचे, अति नीचे इस पृथ्वी पर आया जहां आप हैं। आप और मैं इस महान कदम को कभी नहीं समझ सकते। स्वर्ग की महिमा से इस पृथ्वी पर उतरना, यह निश्चय ही मानवीय समझ से परे है कि हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। जब कोई व्यक्ति एक अच्छे ऊंचे पद पर होता है और उसे निवेदन किया जाता है कि उस पद से वो नीचे पद को ग्रहण करे, तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर हम मनुष्यों के बीच में हमारे जैसा बनने के लिए आ गया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था, तब उसका स्थान ऐसा नहीं था कि किसी कमी के कारण वह उससे वंचित हो जाए, उसकी प्रतिस्पर्धा में योग्यता की कमी आ जाए। उसने ईश्वरत्व की शिक्षा स्कूल से नहीं पाई थी, उसने उस स्थान के लिए पदोन्नति नहीं पाई थी। वह तो स्वयं परमेश्वर था। उसे परमेश्वर पिता से यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वह पृथ्वी पर जाता है तो परमेश्वर उसका स्थान प्रधान स्वर्गदूतों से बचा करके रखे। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु आपको यह बताना चाहता हूं कि वह स्थान उसी का था, क्योंकि वह परमेश्वर था। उसके लिए उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी, न ही उसने स्वर्ग छोड़ने में आनाकानी की। उसने कभी नहीं कहा, मैं चाहता तो नहीं हूं पर जाना पड़ेगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता हूं, लेकिन करना ही पड़ेगा। वह सहर्ष आया। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके लिए धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। तब हम पढ़ते हैं 10:7 में, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। वह सहर्ष इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर आते समय वह उस स्थान का त्याग नहीं कर रहा था जिसकी उसे लालसा थी। मेरे प्रिय मित्रों, यह कितना बड़ा आनंद का विषय हम सबके लिए है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मुझे और आपको बचाने के लिए हमारे बीच में आ गया। क्यों ना आज हम अपने जीवन में उस प्रभु को स्मरण करें और कहें कि प्रभु मैं आपके राज्य में, आपकी निकटता में, आपकी संगति में आना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही परमेश्वर की उन महानताओं को देखा है और आज अपने जीवन में एक सही निर्णय लेकर आप उसमें बढ़ेंगे। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान,
मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान,
मेरो मन लागो,
मेरो मन लागो,
मेरो मन लागो,
मेरो मन लागो
यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान।